नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 पर प्रगति मैदान नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद इस अवसर पर उनका संबोधन होगा। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 दो दिवसीय कार्यक्रम है जो 9 और 10 जून को आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC द्वारा किया जा रहा है। यह BIRAC की स्थापना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो का विषय बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत है। एक्सपो उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग जगत के नेताओं, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, जैव इनक्यूबेटरों, निर्माताओं, नियामकों, सरकारी अधिकारियों आदि को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। एक्सपो में लगभग 300 स्टॉल स्थापित किए जाएंगे जो अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करेंगे। स्वास्थ्य देखभाल, जीनोमिक्स, बायोफार्मा, कृषि, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट से मूल्य, स्वच्छ ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी। शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं में उदासीनता को दूर करने के लिए जल्द बड़ा फैसला होने जा रहा है। चुनाव आयोग सभी केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और 500 से अधिक कर्मचारियों वाली निजी कंपनियों को एक पत्र लिखने जा रहा है, जिसमें ऐसे कर्मचारियों की निगरानी रखने को कहा जाएगा जो मतदान के दिन छुट्टी तो लेते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते। चुनाव आयोग अपने स्थानीय चुनाव अधिकारियों के माध्यम से सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहेगा जो मतदान न करने वाले कर्मचारियों पर नजर रखेंगे। नाम न बताने की शर्त पर चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम नियोक्ता से उन कर्मचारियों को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित विशेष मतदाता जागरूकता कार्यशालाओं भेजने का अपील करेंगे जिन्होंने चुनाव के दिन मतदान नहीं किया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में मतदाता उदासीनता को खत्म करना है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का आज यानी 9 जून 2022 से आगाज होगा। सीरीज का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में है। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से जीत हासिल की थी। ऐसे में उनकी कोशिश अपनी जीत की लय बरकरार रखने पर होगी। यही नहीं, टीम इंडिया लगातार 12 T20 मैच जीत चुकी है। यदि वह साउथ अफ्रीका को पहले मैच में हरा देती है तो T20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाएगी। पहले T20 मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। KL राहुल ग्रोइन इंजरी और कुलदीप यादव दाएं हाथ में चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी पहले से ही इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में KL राहुल की जगह ऋषभ पंत को टीम की कमान दी गई। पहले मैच में ऋषभ पंत के अलावा दो और विकेटकीपर ईशान किशन और दिनेश कार्तिक चुने जाने की संभावना है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 में हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल बेहतरीन फॉर्म में थे। वे इसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल तेज गेंदबाजी की कमान संभालते दिख सकते हैं। तीसरे तेज गेंदबाजी विकल्प के लिए अर्शदीप सिंह और आवेश खान के बीच टॉस होने की उम्मीद है। कांग्रेस ईडी के समक्ष राहुल गांधी की पेशी से पहले शक्ति प्रदर्शन करने को तैयार है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी को 13 जून को ईडी के सामने पेश होना है। बुधवार को सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के इस राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस के संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ ही सभी वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इसके लिए सभी नेताओं को हर हाल में सोमवार यानी कि 13 मई को सुबह अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचने को कहा गया है। कांग्रेस सोमवार को अपने मुख्यालय से APJ अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी मुख्यालय तक रैली निकालेगी और उसके जरिए अपने सियासी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्टी ने गुरुवार की शाम को अपने महासचिव, राज्यों के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक भी बुलाई है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को कांग्रेस ने भाजपा की सियासी बदले की कार्रवाई बताया। बुधवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया। उन्होंने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर CCEA के फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 17 फसलों और 14 खरीफ फसलों के MSP को मंजूरी दी गई है। हालांकि इस दौरान दिलचस्प बात ये रही कि किसानों से जुड़े मामलों की घोषणा के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद नहीं थे। दरअसल आम तौर पर जब किसी मंत्रालय से संबंधित किसी बड़े फैसले की घोषणा की जाती है तो उससे संबंधित प्रभारी मंत्री की मौजूदगी होती है, लेकिन जब बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने MSP की घोषणा की तो न ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे और न ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने ऑफिस में मीटिंग में व्यस्त थे। अनुराग ठाकुर के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ब्रीफिंग के दौरान मौजूद थे। MSP बढ़ाने का फैसला किसानों के हित में जा रहा है, ऐसे में इस बड़ी घोषणा के दौरान कृषि मंत्री का ही मौजूद न होना चौंकाने वाला है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।